सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शात शात वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह, धन्य प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिप्पियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने इस पत्री के 3 अध्याय को समाप्त किया है और 4th अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और आज यह पत्री हम में से हर एक के लिए आखिरी अध्ययन का विषय होगा। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की निकटता में सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु अब तक आपने हमें से प्रत्येक को संभाला है, आपने हमें ये जीवन दान दिया है। यद्यपि कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम दुर्बल और कमजोर हैं, हम बार बार आपके विरोध में कार्य करते हैं, इसके बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं और आप हमारे जीवन से और अधिक आशीषों को देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी विनती है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जो आपके वचन को सुनता है अपने जीवन में समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश, चिंतित, परेशान या किसी प्रकार के दबाव में है, या अपनी नौकरी की तलाश में है, जीवन साथी की तलाश में है, या एक अपने पारिवारिक जीवन में बच्चे की आशीष की उम्मीद में है। पिताजी, आप इन पर कृपा दृष्टि करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, अपनी शांति उन्हें दे, ताकि हर एक इस बात को समझ सके कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। आज हम सबसे बातचीत करेंगे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे लिए फिलिपियों की पत्री का अध्ययन आखिरी अध्ययन होगा, और मैंने आपको कहा था कि इस पुस्तक का लेखक पौलुस, जो रोम के कैद में होकर फिलिपी के कलीसिया के लोगों के लिए यह पत्र लिखता है, और मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि हम एक ऐसे पद को देखने जा रहे हैं जिसका संदर्भ लोग कई बार दिया करते हैं, और मेरे विचार में इसका संदर्भ परिस्थिति विशेष में ही दिया जाना चाहिए। यह पद जीवन में व्यवहारिक है और इस पद को जीवन में उपयोगी बनाना है। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 4:13। फिलिपियों की पत्री 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर से एक बात सुनिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस पद को ज्यों का त्यों समझना है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है सब कुछ, सब कुछ। तो क्या वह वास्तव में सब कुछ कर सकता है? क्या आप छत पर से कूद जाएंगे? पौलुस के कहने का अर्थ है, प्रभु की इच्छा में उसके लिए जो भी है वह सब कुछ वह कर सकता है। प्रभु यीशु सामर्थ प्रदान करेगा, प्रभु आपको जो भी वरदान देगा उसे पूरा करने का सामर्थ भी आपको देगा। वरदान विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। आप जब तक मसीह में होकर कुछ करेंगे वह आपको सामर्थ प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं रेल यात्रा करना पसंद करता हूं, हवाई यात्रा मैं नहीं करता क्योंकि अभी तक मैं उसमें यात्रा नहीं किया हूं, और हो सकता है कि जब आवश्यकता पड़े तो मैं उसमें भी यात्रा कर पाऊं। रेल यात्रा अधिक रोमांचक और अधिक आनंददायक होता है। उसमें समय तो लगता है परंतु आप अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य ही पहुंच जाते हैं। एक रेलगाड़ी है जिसका बड़ा नाम है सुपर चीप। वह कहती है, मैं रेल पर वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आवश्यक है। मैं सर्वोच्च पर्वत पर चढ़ जाती हूँ चाहे मेरी गति कम हो, फिर मैं उस पर्वत के दूसरी ओर उतर भी जाती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब यदि वह रेलगाड़ी कहे कि मैं इस मार्ग में चलते चलते ऊब गई हूँ, मैं रेगिस्तान की ओर जाना चाहती हूँ, और वह रेल पर से उतर जाए, तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि पटरी पर से उतर जाए तो क्या होगा? सर्वनाश। वह रेलगाड़ी असहाय और बेकार हो जाएगी। जब तक वह अपने निश्चित रेल पटरी पर होगी तब तक ही वह सुपर चीप होगी और वह सुपर चीप का काम करने के योग्य भी होगी। वह पहाड़ पर चढ़ पाएगी और उतर भी पाएगी, परंतु ज्यों ही वह रेल की पटरी से उतरेगी वह किसी भी काम की नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन इसी प्रकार से होते हैं। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को देना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा बताए गए उन पद चिन्हों पर चलना नहीं चाहते हैं, तो निश्चय ही हम अपने गंतव्य स्थान की ओर नहीं जा रहे हैं। आज मुझे और आपको इस बात को देखना और जांचना है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस अपने बारे में यही कहता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह की देह के सदस्य हैं तो प्रभु यीशु आपका सिर है और आपको अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा। आपका पथ उसकी इच्छा है। आपका सिर कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण सिर करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु करे और आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य भी यीशु के इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं कि वह टिड्डियों के समान कूद कूद कर चल सकता है, सांप के जैसा रेंग सकता है। स्कूल में तो मैं भी ऊंची कूद में भाग लेता था, परंतु अब नहीं कूद सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु प्रभु की इच्छा में जो है वह सब मैं अपने उद्धार पाने के समय से इस संसार से उठाए जाने के समय तक कर सकता हूं और करता हूं। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, मसीह आपको शक्ति देगा और आपको क्षमता प्रदान करेगा कि आप उसकी इच्छा में जो कुछ है वह सब कुछ कर पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आप में असीमित शक्ति देगा कि आप जो चाहें सो करें। कई लोग इसी प्रकार से सोचते हैं, परंतु वह केवल उसकी इच्छा में जो बातें हैं उसी को करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं या किसी की हानि पहुंचाना चाहते हैं तो वह आपको इसकी शक्ति नहीं देगा। उसकी इच्छा में जो है कि आप उसके लिए भला करें तो वह आपको शक्ति देगा। जब आप और मैं मसीह में हैं और मसीह में ही अपने निर्धारित पथ पर चल रहे हैं तो हम अमेघ हैं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। परंतु जिस पल हम उस महिमामय स्थान से पाप करके या अपनी इच्छा के अधीन होकर या सहभागिता की कमी के कारण परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाएंगे तो हमारा जीवन ध्वंस हो जाएगा और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। यदि हम अपने निर्धारित पथ पर रहेंगे तो मसीह में कुछ भी कर पाएंगे। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अतः उचित होगा कि परमेश्वर से हम कुछ मांगने के लिए निश्चित करें। कुछ मांगने से सुनिश्चित कर लें कि हम कहां पर हैं। परमेश्वर की इच्छा में रहना हमारे लिए अति आवश्यक है। मेरे मित्रों, मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा में रहना अति आवश्यक है और उसकी इच्छा बाइबल के ज्ञान से ही निश्चित की जाती है। अधिकांश विश्वासी सोचते हैं कि यदि वे शॉर्टकट मारेंगे या छोटे रास्ते से जाएंगे तो उनकी सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मनुष्य से पूछा जिसने एक मार्ग अपनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। उसने मुझे बताया कि उससे उसे और उसके परिवार को कितना लाभ हुआ है। उसने कहा कि उनके जीवन में गंभीर परिवर्तन आया है। कुछ महीनों के बाद मैंने उससे फिर पूछा, आपका वह प्रयोग कैसा चल रहा है? उसने कहा, लौटकर बुद्धू घर को आए। अतः स्पष्ट है कि उसकी समस्या का समाधान उसमें नहीं था। मैंने उससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा, आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन ही समाधान है और अति सरल भी है। मैं उसके लिए पैसा नहीं ले सकता। हम कोई भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के वचन को मुफ्त में बांटते हैं। हम इन छोटे छोटे मार्गों को त्याग परमेश्वर के वचन के अध्ययन में क्यों नहीं लगा देते? हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए समय निकालते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार चाहे कैसा भी अद्भुत हो, वहीं पर रुके ना रहें। बाइबल में अन्य 65 पुस्तकें और भी हैं। यदि आपको संपूर्ण वचन का ज्ञान है तो आपके पास परमेश्वर की पूर्ण इच्छा का ज्ञान है और आपके जीवन में कुछ करने का आधार आपके पास है। इसमें आनंद है, संतोष है और परमेश्वर की इच्छा में होने का सच्ची प्रसन्नता है और उसकी इच्छा पूरी करने का हर्षोतारेक इच्छा भी है। मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर से 40 वर्षों तक दूर था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि मैं जब कभी भी यात्रा करता हूं, हवाई यात्रा करता हूं, तो मैं हमेशा बाइबल को पढ़ता हूं, परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करता हूं, बार बार उसी पद को पढ़ता हूं और मैं सोचता हूं कहीं कोई पद मुझसे छूट ना जाए, ताकि जब परमेश्वर मुझसे पूछे कि क्या तुमने इस पद को पढ़ा, तो मैं कह सकूं हाँ मैंने इसको पढ़ा है। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति 40 वर्षों तक परमेश्वर के वचन से दूर था, लेकिन आज वह हर एक वचन के बिंदु और पद को पढ़ना चाहता है। क्या आप इस प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए लालायित रखते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ में समय देते हैं? पौलुस कहता है कि हम जब परमेश्वर के वचन में संगति करते हैं, समय देते हैं, तो वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए यति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस चाहता है कि वे जाने, वह उनकी भेंट से अति प्रसन्न था। तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए, यह उसका व्यक्तिगत धन्यवाद है। कई बार हम कई अच्छे कामों के लिए लोगों को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन पौलुस व्यक्तिगत रीति से कलीसिया के उन लोगों को धन्यवाद कहता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस उस कलीसिया को स्मरण करता है। वह कलीसिया एक रत्न थी। आज भी ऐसी अनेक कलीसियाएं हैं, उनकी सहभागिता अद्भुत है और उनमें परमेश्वर की बातों के लिए मन भी है। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से आशीष दे रहा था। जी हाँ, अतः यह कलीसिया प्रेरित पौलुस के मन में वास करती थी। उन्होंने उसके लिए सहयोग भेजा। पौलुस उनका मिशन सेवक भी था। क्या आप पौलुस को पाकर अति प्रसन्न नहीं होंगे और उसे सहयोग देने में भागी नहीं होंगे? मैं समझता हूं कि यह उस कलीसिया के लिए एक सौभाग्य की बात थी कि पौलुस उनका एक सहयोगी बन सका। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्लुनिकी में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम के वृतांत में हमने देखा था कि सरकारी अधिकारियों के निवेदन पर पौलुस को फिलिपी नगर छोड़ना पड़ा था। यहां से चलकर वह थिस्लुनिके नगर पहुंचा, जहां उसके सुसमाचार प्रचार के कारण लोगों ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया। फिलिपियों की कलीसिया को छोड़ अन्य कोई भी पौलुस की सहायता करने के लिए सामने नहीं आया। पौलुस कहता है कि जब मैं थिस्लुनिके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। इसका मतलब यह है कि फिलिपी की कलीसिया पौलुस के साथ थी, उसकी जरूरत के समय उसके साथ थी। कई बार हम अपने कलीसिया के सेवकों की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी कलीसिया के सेवकों की भी चिंता करें, उनकी जरूरत के समय उनकी सहायता करें। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिलिपियों की पत्री 4:17 में लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। फिलिपी की कलीसिया आज भी अपने दान का फल पा रही है। पौलुस ने यह पत्र उन्हें धन्यवाद देने के लिए लिखा था। हम आज इस पत्र को पढ़कर इस अध्ययन से लाभ उठा रहे हैं। यह उनके दान का लाभ है। वे परमेश्वर के वचन के प्रचार के सहभागी हैं। उन्होंने पौलुस में अपना निवेश किया है, जिसका फसल आज भी वे काट रहे हैं। हम उसका लाभ उठा रहे हैं। जो कलीसिया सेवकों का आदर करती है, दान देती है, निश्चय ही उनके द्वारा कलीसिया बढ़ती है। क्या आज आपकी कलीसिया इस प्रकार की कलीसिया है? आप अपने आप से पूछें। फिलिपियों की पत्री 4:18 में लिखा है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में याजक पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए जाता था, और वह मन भावन सुगंध रूप में ऊपर उठती थी। विश्वासी जब दान देता है तो वह याजक के समान परमेश्वर को मन भावन सुगंध रूपी धूप चढ़ाता है। जब भेंट सही एवं उचित मन से चढ़ाई जाए तो पौलुस जैसा फिलिपी के विश्वासियों से कहता है, वह मात्र दान से कहीं बढ़कर होती है। वह परमेश्वर के लिए मन भावन सुगंध है। इसी प्रकार आपका दान भी यदि उचित मन से दिया गया हो तो वह ऐसा ही होगा। फिलिपियों की पत्री 4:19 में हम पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। पौलुस की आवश्यकताओं के निमित्त उनके आत्मत्याग के बारे में सोचकर पौलुस कहता है कि परमेश्वर उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। वह उनकी सुख सुविधा के विषय में नहीं, उनकी आवश्यकता के विषय में कहता है। तथापि वह अनेक बार सुख सुविधा भी प्रदान करता है और बहुतायत से करता है। यह केवल उसकी दया का प्रेम है। फिलिपियों की पत्री के 4:20 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। महिमान्वन केवल परमेश्वर का है। वह अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटता है। फिलिपियों की पत्री 4:21-22 में हम पढ़ते हैं, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। वह प्रत्येक विश्वासी का व्यक्तिगत अभिवादन करता है। पौलुस के साथ उपस्थित विश्वासी भी अपना अभिवादन भेजते हैं। यहाँ फिर कहा गया है कि वह राजसी परिवार कैसर के घराने के विश्वासी भी थे। अब वे मसीही हैं, अर्थात मसीह के हैं, और चाहते हैं कि फिलिपी के विश्वासी उन्हें स्मरण करें। आइए अब हम आखिरी पद को पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 4:23 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। पौलुस आशीर्वाद के साथ इस पत्री का अंत करता है। मैं भी आशीर्वाद के साथ अंत करना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ सदा बना रहे, आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि फिलिपियों की पत्री के अध्ययन के द्वारा से आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया में इस वचन का प्रयोग करेंगे और उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सब की सहायता करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिलिपी की पत्री से सीखने का अवसर दिया, ताकि प्रभु हम आपके वचन को फिर से एक बार निकटता से समझ सके, जान सके, और विशेष करके फिलिपी की कलीसिया के द्वारा से प्रभु आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हमें आपकी सेवकाई के लिए आपके दासों को दान देना है, उनसे प्रेम करना है और सेवा में सहयोग प्रदान करना है। हम धन्यवादित हैं पौलुस के जीवन के लिए भी, जो निरंतर अपने लोगों के साथ प्रेम में बंधा रहा। हमारी प्रार्थना है कि हम में से हर एक के जीवन में ऐसा ही प्रेम उत्पन्न करें, हमारे जीवन में भी ऐसे ही बोझ उत्पन्न करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकें, एक दूसरे के साथ में प्रभु अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, आत्मिक उन्नति के लिए हम सोच सकें। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हमारे श्रोता भाई बहनों ने आपके वचन को फिलिपी की पत्री से सुना है, सीखा है, हमारी प्रार्थना है कि आप उन सब की सहायता करें, ताकि हर एक जीवन अपने आप में प्रभु आपके निकटता में आ सके, आपसे प्रेम कर सके, आपको महिमा दे सके। आपने हम सब की सहायता की कि हम इस वचन को सीखने पाए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आने वाले दिनों में नए पुस्तक को हम आरंभ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें भी हम आपके आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे।